भागवतम की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार में उन्होंने अर्पण किया है। तो आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें उनके मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो आज का विषय, जैसे मैंने बताया, नए साल की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल में हमको क्या संकल्प करना चाहिए, कैसे हमारा जो गलतियां हमने अभी जो साल गया वो गलतियां वापस दोहरानी नहीं चाहिए, इसके लिए कैसे हम संकल्प कर सकते हैं, कैसे हमारा जीवन में, हमारे जीवन में हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो टिप्स जो है गीता भागवत से हमें देंगे, तो हम सब लोग इनका स्वागत करेंगे। हमारे पारंपरिक पद्धति से सब लोग हाथ ऊपर करके हरि बोल बोलेंगे 3 बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अभी प्रवचन की शुरुआत करेंगे। हरे कृष्ण।
हम छोटा सा एक प्रार्थना गाएंगे और फिर हम उसके बाद थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जिनको भी क्लास में सुनना है यहाँ पर शांति से बैठ जाइए नीचे, और मैं जो गा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, उसको दोहराइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय शोद नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, समवेत भक्त वृंद की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज इस 31 दिसंबर के दिन पर आप बहुत अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जा सकते थे, फिर आपने गोवर्धन इको विलेज जाने का इच्छा रखा, इसलिए हम आप सबको बहुत बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग बैठे हैं, कितने लोग पहली बार आए हैं गोवर्धन इको विलेज, हाथ उठाइए। सब लोग पहली बार आए हैं, और जो लोग लाइन में खड़े हैं, जितने लोग पहली बार आए हैं, सब लोग पहली बार। तो आप लोग जो जिनका दर्शन कर रहे हैं, उनका दर्शन तो कर रहे हैं, उनके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ आके बैठ जाइए, नहीं तो आप सामने देखेंगे और फोटो खींचेंगे चले जाएंगे, लेकिन किनका फोटो खींचा भी पता नहीं चलेगा, और बीच में कृष्णा है, इधर राधा रानी है, और बाजू में कौन खड़े अगर देखेंगे तो कोई बोलता है राधा रानी है, कोई बोलता है बलराम जी है, तो किनका फोटो खींच रहे हैं वो भी आपको पता नहीं है, सोचिए। तो यहाँ पर इतना दूर अगर मेहनत करके आ गए हैं, थोड़ा आधा घंटा बैठ जाइए, जिनका दर्शन कर रहे हैं वो कौन है उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए, और नया साल का शुरुआत उनके बारे में जान के आपका जीवन को सार्थक कर लीजिए। आपका ज्यादा समय में नहीं लूंगा, आधा घंटा में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर आप लोग वृंदावन जो धाम है वो घूमने के लिए जाएंगे। तो बोला जाता है कि भगवान का मंदिर में जब आते हैं, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनका फोटो दिख रहे हैं, आज इनका तिरुभाव तिथि है, तो एक बार वो कथा कर रहे थे और बहुत सारे लोग आ रहे हैं और भगवान का दर्शन करके जा रहे हैं, तो वो जाते जाते एक व्यक्ति को बोले कि आपका आंखों का एक्सरसाइज कैसा हुआ, तो व्यक्ति डर गया, अरे क्या बोल रहे हैं, हमने तो शरीर का एक्सरसाइज किया था, ये आंखों का एक्सरसाइज क्या बोल रहे हैं। बोले कि आप अगर भगवान के धाम आते हैं और भगवान का कथा ना सुन के खाली उनका अगर देख के चले जाते हैं तो ये आंखों का तो एक्सरसाइज हुआ, क्योंकि आंखों में देख लिया लेकिन उनके बारे में सुना नहीं, तो ये क्या हुआ, आंखों का एक्सरसाइज करके चले गए, लेकिन हृदय में कुछ उनके बारे में सुनते हैं तभी तो हृदय में प्रवेश करेगा उनका कथा। इसलिए जो भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हो, कृपा करके दर्शन करके थोड़ा समय यहाँ पर बैठिए और बैठ के सुनिए उनके बारे में। हमारे वॉल्यूंटियर्स हैं, उनके पास जाइए, आपको बिठा देंगे यहाँ पर। माताएं सब इस साइड में बैठना है, इस साइड में, और प्रभु जी सब इस साइड में बैठना है, ठीक है। माताएं जो है इस साइड में बैठिए, प्रभु जी इस साइड में बैठिए, सब माताएं इधर आ जाइए, लेडीज दिस साइड, जेंट्स दिस साइड, ठीक है। हमेशा तो साथ में रहते हैं, थोड़ा भगवान के पास आएंगे, अलग अलग रहेंगे तो ध्यान रहेगा, वन पॉइंटेड फोकस रहेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, नहीं तो घर में क्या चल रहा है वो बोलेंगे, अरे ये चल रहा है वो चल रहा है, यहाँ पर वही भी चीज चलेगा, इसलिए हम यहाँ पर जब आते हैं अलग कर देते हैं, अलग कर देंगे तो क्या होगा, बस आप अकेले हैं और कुछ चिंता आपको नहीं ग्रस्त करेगा, और जब आप अकेले रहेंगे तो भगवान का कथा शांति से सुन पाएंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, आज कौन सा दिन है, 31 दिसंबर, लोग 31 दिसंबर को क्या क्या करते हैं। मैं जब कॉलेज में था, याद है 2000, प्रभु जी ने बोले कि इंजीनियरिंग किया आपने, तो मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो हमारा 31 दिसंबर होने से एक महीना पहले प्लानिंग चालू हो जाता था कि 31 नाइट को किधर पार्टी में जाएंगे, है? और आप लोगों को पता रहेगा क्या क्या लोग करते हैं पार्टी में। तो ये सब हम सोचे 31 दिसंबर के दिन क्या क्या प्लानिंग करते हैं, और 31 दिसंबर के दिन आप लोग सब कुछ प्लानिंग छोड़ के भगवान के इधर आए, तो मैं सबको बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं और आप सबके लिए ताली बजाता हूं, कि आप भगवान के मंदिर में आए तो 31 दिसंबर, नहीं तो लोग कुल्लू मनाली ऊटी किधर किधर जाते हैं 31 दिसंबर, कौन कौन से पार्टी करने के लिए होटल में जाते हैं। तो इतने अच्छे से इतने जगह पर आप आए हैं, तो मैं आपका ये आधा घंटा समय लेके आपका जीवन का अगला साल कैसे अच्छे से शुरुआत कर पाए, और क्या सबसे बेस्ट है हमारा सनातन धर्म में कि किस प्रकार नया साल का शुरुआत किया जा सकता है, उसके बारे में आपको थोड़ा मैं ज्ञान देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि इतने दूर आए हैं 31 दिसंबर का सेलिब्रेशन करने के लिए, गोवर्धन इको विलेज आपने चूज किया है, तो इतना दूर अगर आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि कैसे आप 31 दिसंबर का अच्छे से सेलिब्रेशन कर पाए, और क्या चीज आपको नहीं करना चाहिए और क्या चीज आपको करना चाहिए अगले साल का न्यू ईयर रेजोल्यूशन जिसको बोलते हैं, क्या क्या चीज मन में आपको ठान लेना चाहिए, हमारे शास्त्रों के आधार पर मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, मैं रिसेंटली एक न्यूज पढ़ रहा था, अमेरिका में एक स्टैटिस्टिक उन्होंने निकाला कि 31 दिसंबर का जो दिन रहता है ना, तो अमेरिका में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट उसी दिन होता है। एक दिन में 500 से भी ज्यादा कार एक्सीडेंट होता है, लोग मर जाते हैं। क्यों सोचिए, साल का इस एक दिन में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट होता है अमेरिका में, 500 से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट अमेरिका में होता है, लोग मर जाते हैं। क्या कारण हो सकता है, हाँ? क्या ड्रिंक एंड ड्राइव, बोल रहे हैं प्रभु जी, ड्रिंक एंड ड्राइव, दारू पी के लोग गाड़ी चलाते हैं, तो कभी भी कर सकते हैं, आज के दिन क्यों करते हैं, हाँ? क्योंकि आज के दिन पार्टी ज्यादा होता है। 31 दिसंबर सोचिए, साल समाप्त हो रहा है और नया साल शुरुआत हो रहा है, लोग क्या करते हैं, रात को जाके दारू पीते हैं। बोलता जाता है कि अमेरिका का 50% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, आज के दिन दारू पीता है, 50% पॉपुलेशन। सोचो 100 करोड़ भारत का है, मतलब 50 करोड़ लोग दारू पियेंगे, सोचो कैसा रहेगा। अच्छा है ना शुरुआत, नया साल का शुरुआत, नया साल का शुरुआत दारू पी के कर रहे, तो ये हो रहा है आज के दिन पर, ये हो रहा है। कल हमारा वाड़ा में सत्संग हो रहा था, बाड़ा में खांडेश्वरी नाका में हिंगलाज माता मंदिर में सत्संग हो रहा था। सत्संग में लगभग 100 लोग बैठे थे, और सत्संग हो गया, सब हो गया, मैं सत्संग के बाहर आ गया तो सामने एक वाइन शॉप था, और उसमें एक लंबा लाइन लगे, जैसे हमारा प्रसाद में मंदिर में जैसे लाइन लगते हैं ना महाप्रसाद के लिए। मैं बोला इधर क्या हो रहा है, बोला अरे प्रभु जी आपको पता नहीं कल 31 दिसंबर है ना, इसलिए सब लोग अपना प्रसाद लेने के लिए लाइन में खड़े हैं सब। क्यों, क्योंकि दारू का बोतल लेंगे तो कल पियेंगे, इसलिए इतना लंबा लाइन है। मैं बोला अरे वाह, लोगों के पास मंदिर में आते हैं तो थोड़ा लाइन में खड़े होते तो बोलते कि अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन वहां पर सब डिसिप्लिन में लाइन में खड़े हैं, कोई किसी को कुछ गाली भी नहीं कर रहा है, सब पूरा डिसिप्लिन में लंबा लाइन रोड में खड़े। क्यों, महाप्रसाद लेके कल प्लान करेंगे 31 नाइट को। तो ये हमारा सभ्यता बदल रहा है पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण करने के लिए। पाश्चात्य देश में साल में एक ही महीना, एक ही त्योहार आता है, वो है फेस्टिवल, क्रिसमस का फेस्टिवल, इसलिए वो 15 दिसंबर से जनवरी 15 तक एक महीने का छुट्टी कर देते हैं। क्यों, क्योंकि साल का एक ही तो त्योहार है, फेस्टिवल है, इसको अच्छे से पालन करेंगे, इसलिए वो सब ये सब चीज करते हैं। हमारा सनातन धर्म में अगर देखेंगे 12 महीने में 13 फेस्टिवल रहता है ना, हर महीने में एक, अभी दशहरा गया, अभी दिवाली गया, अभी अभी चालू हो गया, गीता जयंती गया, दिसंबर में सब क्रिसमस को याद करते हैं, लेकिन इसी दिसंबर महीना में भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, मोक्षदा एकादशी को, किसको याद है, किसी को पता नहीं, याद है, अच्छा है। तो इसलिए हम इस्कॉन में क्रिसमस का के जगह पर हम भगवत गीता जयंती का सारा भारत में हम प्रचार करते हैं। सोचिए इतना बड़ा शास्त्र जो 18 पुराण, 108 उपनिषद है, इस सभी वेदों का जो सार है, भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को इसी दिसंबर के महीने में दिया था। लोगों को पता भी, लोगों को तो इतना भी पता नहीं कि गीता कौन किसी को बोला था। एक बार क्लास में पूछा कि कौन गीता, बोले कि हाँ धृतराष्ट्र ने बोला था संजय को गीता बोल रहे, क्योंकि वही पहला श्लोक है ना, उतना ही उसको पता है। धृतराष्ट्र उवाच महामका पांडवाश्च वकीम करु वत संजय, बोले कि हाँ धृतराष्ट्र ने संजय को भगवत गीता सुनाया था। बोले वाह बेटा वाह, ये हमारा पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, सोचो भगवत गीता का ज्ञान। यस, भगवत गीता में कितने अध्याय है, कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइए, देखो यहीं देख लो आप। लेकिन बॉलीवुड में शाहरुख खान कितना मूवी निकाला है पूरा स्टैटिस्टिक में बता देंगे आप, हैं बता देंगे ना, बता देंगे सब, कौन कौन सा मूवी हिट हुआ है, कौन कौन सा फ्लॉप हुआ है, सब बता देंगे। लेकिन हमारा जो ग्रंथ में कितना अध्याय है हमको पता नहीं। तो ये चीज हमको जानना चाहिए। भगवत गीता में संपूर्ण कितने श्लोक है पता है किसी को? कितना श्लोक है? 700 श्लोक है। बहुत अच्छा है, है? कुछ कुछ लोगों को पता है। तो ये सभी सनातनी धर्म को हमको पता रहना चाहिए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से इस दिसंबर के महीने को हम गीता मैराथन बोलते हैं। मैराथन शब्द सुनते ही लोग हैरान हो जाते हैं कि मैराथन मतलब हमने दौड़ने का मैराथन सुना था, ये गीता मैराथन क्या, गीता पकड़ के दौड़ना है क्या? तो हम सारा विश्व में इसी महीने में हम भगवत गीता को घर घर गीता अभियान में, हर घर में गीता रहना चाहिए। घर में बॉलीवुड मैगजीन रहता है, ये मैगजीन रहता है, लेकिन गीता घर में नहीं रहता है। सोचो, जो हमारा धर्म का नींव है, फाउंडेशन है। एक बार मैं बॉम्बे के ग्रैंड रोड स्टेशन में भगवत गीता बांट रहा था, जब 2012 का बात बोल रहा हूं, नया नया आश्रम में ज्वाइन किया था, भगवत गीता बांट रहा था, तो एक व्यक्ति बोलता कि स्वामी जी हमारे पास गीता है। मैं बोला अरे बहुत अच्छा है, गीता पढ़ रहे होंगे फिर? बोले अरे गीता थोड़ी पढ़ाया जाता है, गीता को मैंने लाल कपड़े में निपट लिया है, उसको बांध लिया है और भगवान के घर में रख दिया है। इतना ही नहीं, हर रोज अगरबत्ती भी घुमाता हूं, बोला गीता को। मैं बोला बहुत अच्छा करते हो, कभी वो लाल कपड़ा खोल के पढ़ा है? बोले अरे स्वामी जी फुर्सत कब मिलता है खोलने के लिए, अगरबत्ती दिखाओ, हो गया है ना। बोले कि भाई साहब अगरबत्ती दिखा रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ खराब नहीं है, लेकिन गीता को पूजा अगरबत्ती दिखा के नहीं किया जाता है, गीता को पूजा पढ़ के किया जाता है। भगवान ने इतना मेहनत करके महाभारत में इस भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया है, किसके लिए दिया है? हम सबके लिए दिया है। अर्जुन को कोई भ्रम नहीं हुआ था, अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा शिष्य था और बहुत बड़ा भक्त था। भगवान ने जानबूझ के अर्जुन के हृदय में उस माया को प्रवेश करवाया ताकि अर्जुन फाइनल मैच में बोलेगा, अभी इंडिया पाकिस्तान अगर फाइनल मैच चालू है और विराट कोहली बोलेगा मैं बैटिंग नहीं करूंगा, अभी पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा, क्या हो गया, पागल हो गया क्या? अभी फाइनल मैच चल रहा है, महाभारत का इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और सबसे बड़ा जो हीरो है क्या बोल रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो सबका कैमरा उधर जाएगा ना, क्या हो गया इसको? तो उस भगवान ने यह परिस्थिति लाया है एक ही कारण के लिए। कौन सा कारण? भगवत गीता का ज्ञान दे पाए, क्योंकि सबका फोकस उधर रहेगा। तो भगवान गीता बता रहे हैं तो सब बोलेंगे ना, युद्ध करेगा कि नहीं करेगा अर्जुन, करेगा कि नहीं करेगा, AK-47 उठाएगा कि नहीं, गांडी में नीचे रख दिया अभी, तो सबका नजर उधर ही है ना, युद्ध करेगा कि नहीं करेगा, और उसी अंदर भगवत गीता का ज्ञान पढ़ लेगा व्यक्ति। इसलिए पूरा महाभारत के पूरा क्लाइमेक्स सीन में भगवत गीता रखा है। महाभारत अगर देखेंगे उसके अंदर पूरा पॉलिटिक्स भर भर के है, शकुनी मामा धृतराष्ट्र कोई कहीं कम नहीं है, रोमांस भी भर भर के है। भगवान कृष्ण ने कैसे 16,108 रानियों को विवाह किया, वो भी एक एक रानियों को भगा के विवाह किया, वृंदावन के लीला गोपियों के साथ। पॉलिटिक्स है, रोमांस है, फाइटिंग है, सबसे बड़ा फाइटिंग महाभारत का, उससे बड़ा कुछ फाइटिंग है क्या? सारा विश्व एक फील्ड में आ गया था, इधर कौरव के 11 अक्षौणी सेना और इधर 7 पांडव के अक्षौणी सेना, मतलब सारा ब्रह्मांड में जितने सारे राजा थे एक फील्ड में आ गए थे युद्ध करने के लिए। उससे इतना बड़ा फाइट अभी तक इतिहास में हुआ नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है? महाभारत। वो आता ना बीआर चोपड़ा का महाभारत। तो सोचो सब कुछ भर भर के इस महाभारत में डाला है, कोई बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है महाभारत। और उसका क्लाइमेक्स सीन रहता है ना, कभी कभी बॉलीवुड का लास्ट क्लाइमेक्स सीन अगर देखेंगे तो आजकल कुछ बदल जाता है, पहले पहले हम बचपन में देखते थे तो लास्ट में क्या होता है, वो जो विलेन रहेगा वो हीरोइन को किडनैप कर लेगा और हीरो जाता है फाइटिंग करने के लिए और एंड मोमेंट तक पता नहीं चलेगा हीरो जीतेगा ना मरेगा, और एंड में होता है हीरो क्या करता है, विलेन को मार देता है और हीरोइन को ले लेता है और बॉलीवुड एंड द एंड हो जाता है। तो महाभारत कभी देखेंगे तो ऐसा परिस्थिति भगवान लाते हैं कि अर्जुन बोल रहा है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो सबका अटेंशन उधर ही है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और उसके बीच भगवान कृष्ण क्लास देते हैं अर्जुन को 45 मिनट का, ज्यादा नहीं, 1 घंटे का क्लास रहता है आपका, जितना भी 1 घंटा है 10:30 से 11:30 वैसे 1 घंटे का क्लास रहता है। और उस 1 घंटे के क्लास में संपूर्ण भगवद गीता का 700 श्लोक अर्जुन को सुना देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, अर्जुन सुन के समझ भी जाता है और अपना AK-47 उठाता है, बोलता है किसको मारना है, बोलो अभी उड़ा दूंगा, अभी पूरा फॉर्म में हूं अभी। है? तो ये जो परिवर्तन है अर्जुन का, इसी भगवत गीता का ज्ञान से हुआ है। तो भगवान अर्जुन को सिखाते हुए सारा संसार को सिखा रहे हैं कि आप भी आपके जीवन में उसी अर्जुन के तरह हैं, कि जीवन में कब आपको निर्णय लेना है, क्या सही है क्या गलत है। हम भी भ्रमित हो जाते हैं घर घर के प्रॉब्लम में, बिजनेस में, ऑफिस में, हर परिस्थिति में आपके जीवन में एक चॉइस आता है, ये करूं या ये करूं। तब इस गीता का ज्ञान आपको मदद करेगा जीवन का मैं क्या निर्णय लूं। इसलिए भगवान इस भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं हमारे लिए, ताकि इस गीता का ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लें और उतार के अपने जीवन को सुधार लें। तो ये गीता जयंती इसी दिसंबर के महीने में हुआ था, इसलिए मैंने बताया, थोड़ा बैकग्राउंड दिया। तो हर सनातनी धर्म को पता रहना चाहिए कि भगवत गीता इसी दिसंबर के महीने में हुआ था और गीता हमको पढ़ना चाहिए। तो अगर घर में भगवत गीता नहीं है, जरूर एक भगवत गीता घर में रहना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए आपको। अगर भगवत गीता है तो भगवत गीता लीजिए, और इधर उधर का गिफ्ट देने से अच्छा है भगवत गीता का गिफ्ट दीजिए। पीछे ही देखिए हमारा स्टॉल लगा है, प्रभु जी माता जी इतना मेहनत से भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बोलेंगे अरे उनको कुछ मिल रहा होगा ना, भगवत गीता बांट रहे हैं उनको। हाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, भगवान का कृपा मिलेगा। तो इतना घर गृहस्थी संसार छोड़ के बैठ के सबको भगवत गीता बांट रहे हैं, तो जरूर भगवत गीता लीजिए और अपना मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। तो चलिए आज का जो मेन मुद्दा है हम चर्चा कर रहे हैं कि 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर नाइट को लोग सेलिब्रेशन करते हैं, लोग अलग अलग जगह पर जाके पार्टी बनाते हैं, अलग अलग जगह पर सेलिब्रेशन जश्न करते हैं। क्यों करते हैं ना, 31 दिसंबर हो गया। तो मैं एक चीज आपको पूछूंगा, 31 दिसंबर में क्या होता है आपका जीवन का, एक 2023 क्या हुआ, चला गया ना, आ गया 2023 चला गया ना, तो एक साल आपके जीवन में चला गया, उसका मतलब क्या है, एक साल खत्म हो गया, मतलब मृत्यु के एक साल नजदीक आ गए ना, दूर चले गए, नजदीक आ गए ना। तो हम जो सेलिब्रेशन करते हैं थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए कि 31 दिसंबर मतलब हम भगवान के जो मृत्यु है उसका नजदीक एक साल आ गए। तो एक साल चला गया हमारे जीवन में, इसलिए भागवत में एक श्लोक वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, हम सबको ध्यान देना चाहिए भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं इस एक साल जाने के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भागवत में, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूं आप लोग दोहराइए इसको। आयुर्हरति वैपुंसार, बोलिए, उद्यानस्तान च यन्नसौ तस्यार्ते यत् क्षणो नीता, उत्तम श्लोक वार्ताए। तो बोला जा रहा है यहां पर, सुखदेव गोसाई बोलते हैं कि आयुर्हरति वैपुंसा, आयु मतलब क्या है, आपका जीवन का जो समय है। आयुर्हरति, हरति मतलब क्या है, कम हो जाता है, जीवन का हर क्षण कम हो जाता है। आयुर्हरति वैपुंसा, हर कोई व्यक्ति संसार में जो है उसका समय बढ़ रहा है ना, कम हो रहा है, कम हो रहा है। आयुर्हरति वैपुंसान, उद्यान अस्तम च यन असौ, सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त जैसे होता है, हर दिन जीवन का हर पल कम होते 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 जाता है। ठीक है ना, कोई गारंटी दे सकता, नहीं नहीं मेरा नहीं हो रहा है, कोई भी आप हैं संसार में सबका जीवन हर पल कम होते होते जाता है। तस्यार्ते यत् क्षणो नीता, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ के, तस्य हरते यत् क्षणो नीता, जो व्यक्ति जीवन का हर क्षण क्या करता है, उत्तम श्लोक वार्ता है, राधा वृंदावन विहारी जो यहां पर हैं उसके बारे में जो वार्ता करता है, उसको छोड़ के बाकी सब व्यक्ति का आयु हरण हो जाता है। आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, है, हम क्या आप लोग नहीं मरने वाले हैं, आप लोग जो भक्त हैं क्या आप लोग का राम राम सत्य नहीं होगा क्या, खाली हम लोग थोड़ी मरेंगे, आप लोग भी तो मरने वाले हैं, आप लोग को भी तो बुढ़ापा आएगा, ऐसा थोड़ी बता रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं।
तो सुखदेव गोस्वामी ये संदेश किसको सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, जो कि 7 दिन 7 रात में मरने वाले ना। 7वां दिन में तक्षक आके उनको दंशन करने वाला है, खुद 7वां दिन में मरने वाले उनको सुना रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप नहीं मरेंगे। बोले कि अरे क्या आप भागवत में कुछ भी बोलते हैं, 7 दिन में मरने वाले हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप नहीं मरेंगे, अमर हैं। देखिए 7वां दिन जब भागवत कथा चल रहा था, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कि हे महाराज परीक्षित, आपको मैं ये भागवत कथा अमृत का पान करवाया हूं और आप अमर हो चुके हैं, आपको तक्षक आके कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, आप डरिए मत। आपको मैंने जो कथा सुनाया है उसको ऊपर मनन कीजिए, आप भगवान के धाम पहुंच गए। तो जब 7वां दिन हुआ और जब भागवत कथा चल रहा था, तक्षक आके पीछे प्रवचन चल रहा था, पीछे बैठा था, जैसे आप लोग बैठे हैं ना यहां पर, तो सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे थे पीछे तक्षक बैठा था, बोल रहा था कि कब महाराज कथा बंद करेंगे और अपना काम करूंगा आके। तो सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं पीछे बैठा है तक्षक मारने के लिए, और सुखदेव गोस्वामी क्योंकि जब तक भागवत कथा चलता है बोलते कि व्यक्ति अमर है, वहां पर मृत्यु कुछ नहीं कर सकता है, तो तक्षक इसलिए वेट कर रहा था महाराज कब कथा खत्म करेंगे और अपना काम करूंगा। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी 7वां दिन में कथा समाप्त करते हैं और परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि महाराज डरो मत, मैंने जो आपको 7 दिन का भागवत कथा अमृत सुनाया है वो कोई संजीवनी बूटी से कम नहीं है, आपको तक्षक कुछ भी नहीं कर सकता है, मैंने जो 7 दिन सुनाया है उसके ऊपर मनन करो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, भगवान गीता में बोलते हैं मेरा हर क्षण मनन करो है? तो उसको मनन करते रहो, मृत्यु कुछ भी आपका नहीं कर पाएगा, इसलिए डरो मत, मैं जा रहा हूं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बोल के सुखदेव गोस्वामी व्यास आसन से उठ के चले जाते हैं और परीक्षित महाराज जो 7 दिन भागवत कथा सुने थे उसके ऊपर आंखों को बंद करके मनन करना चालू करते हैं, और उसके ऊपर जैसे ही मनन करते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उस मनन के ऊपर भगवान को मनन करते करते उस शरीर को छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं सीधा। जय श्री परीक्षित महाराज की। और उसी समय तक्षक आता है उनको मारने के लिए। तो तक्षक आता है और जब मारने के लिए आता है, सुखदेव गोस्वामी का खाली शरीर था, लकड़ी का शरीर था, आत्मा भगवत धाम चला गया था और उस लकड़ी का शरीर को जला के जाता है तक्षक। तो इस प्रकार जो वैष्णव रहते हैं, भक्त रहते हैं, वो मृत्यु के ऊपर विजय हासिल कर पाते हैं, क्योंकि भगवान का कथा श्रवण करके वो मृत्यु के ऊपर विजय हासिल करके भगवान के धाम जाते हैं। अब बोले अरे जो भी है प्रभु, मृत्यु तो आया ना, मर तो गया ना, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भक्तों का मरना और अभक्त का मरने में अंतर क्या है। आपने घर में बिल्ली देखा रहेगा, कितने लोग बिल्ली देखा है? सब लोग देखा है ना। बिल्ली कभी कभी मुंह में अपना बच्चा को पकड़ के चलती है, देखा है? कितने लोग ने देखा है मुंह में बच्चा को पकड़ के? ठीक है, तो जब मुंह में बिल्ली अपना बच्चा पकड़ के जाती है तो आप थोड़ा ध्यान से बच्चा को देखो, बच्चा अपना आंख बंद करके आराम से रहता है, क्यों? मां के हाथ में है ना। बच्चा मां के जब गोदी में रहता है टेंशन में रहता है, आराम में रहता है, क्योंकि मां के गोदी में है। वही बिल्ली कभी कभी चूहे का पिल्ला को भी पकड़ के जाता है, देखा है? कितने लोग देखा है चूहे का पिल्ला? देखा है चूहे का पिल्ला कैसा रहता है? पूरा डरा हुआ रहता है, रहता है ना, क्योंकि अभी महाप्रसाद है गोविंदे होने वाला अभी, क्योंकि बिल्ली का जो दांत रहता है चूहे का पिल्ला का पेट के अंदर पार करके अंथड़ियों को चीर के अंदर गया रहता है और उसको इतना दर्द हुआ रहता है, छटपट छटपट हो रहता है, मृत्यु के साथ संघर्ष करते रहता है। लेकिन वही बिल्ली का मुंह में जब उसका बेटा रहता है बच्चा, जब बिल्ली का पिल्ला रहता है वो आराम से आनंद में रहता है, क्योंकि दांत अंदर नहीं घुसा रहता है, उसको पकड़ के रखता है। देखने में बाहर के दृष्टिकोण में दोनों एक लग रहे हैं, लेकिन आंख जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? अंतर है ना। एक
जीवन का सबसे बड़ा सुरक्षा स्थिति में है बिल्ली का बच्चा, और उसी जगह पर जो चूहे का बच्चा है जीवन का सबसे बड़ा असुरक्षित जगह पर है, मरने वाला है। राम राम सत्य होने वाला है। जो देखने का दृष्टिकोण में कोई बच्चा देखेगा, आ दोनों तो सेम ही है, बिल्ली पकड़ा है, नहीं, जमीन आसमान का फर्क है, एक आराम से है दूसरा मर रहा है। तो उसी तरह ये जो मृत्यु है जब भक्तों के संसार में आता है, भक्तों के जीवन में आता है, मृत्यु उस बिल्ली जैसा है जो अपना बच्चा को पकड़ा है, भक्त को पकड़ता है। वही मृत्यु जब अभक्त के पास आता है वो चूहा है जिसको मृत्यु दबोच के लेता है, मारने वाला है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र की संत भूमि में संत तुकाराम आचार्य महाराज जब शरीर छोड़े, कैसे शरीर छोड़े थे, वैकुंठ विमान आया था उनको लेने के लिए, ठीक है ना। ध्रुव महाराज जब शरीर छोड़ने वाले थे तो वैकुंठ विमान आया था उनको लेने के लिए, और मृत्यु आके प्रणाम कर रहा है, महाराज हमको भी थोड़ा सेवा में लगाओ, हमको छोड़ के आप जा रहे हैं। तो ध्रुव महाराज बोले कि ठीक है, अभी मैं वैकुंठ विमान में चढ़ने वाला हूं, नीचे यहां पर स्टेप बन जाओ। तो मृत्यु के शरीर, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रख के ध्रुव महाराज वैकुंठ विमान में चले गए। तो इसलिए जो मृत्यु आता है, जो भक्त रहता है विचलित नहीं होता है, लेकिन जो अभक्त रहता है विचलित हो जाता है। क्यों विचलित हो जाता है? मामा लोग दर्शन देते हैं। कौन से मामा? यमदूत। आप ऐसा हॉरर मूवी देखा नहीं रहेगा जितना डरावना यमदूत रहते हैं। जब अजामिल भी मृत्यु, जब अजामिल मरने वाला था किसको दर्शन देता है? वो भी मामा को दर्शन करता है, यमदूत को दर्शन करता है। और यमदूत बोलते हैं इतने डरावने रहते हैं, उनका चेहरा जो रहता है, और इंग्लिश लेटर देखा रहेगा एस जैसा रहता है ना, वैसा उनका चेहरा रहता है। सोचो कैसा दिखते रहेंगे। ऐसा कोई हॉरर मूवी नहीं है जो यमदूत को अभी तक दर्शन करवाया है। तो लाइव दर्शन होता है, वहां पर लाइव शो चालू हो जाता है। जब व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म क्या रहता है, मृत्यु समय पर यमदूतों को देखता है और मल मूत्र का विष्टार्जन करके वहां पर डर जाता है। लेकिन अजामिल उसी जगह पर क्या करता है, अपना बच्चा खेल रहा था, उसका नाम था नारायण, और जोर से चित्कार करता है, नारायण। सब लोग जोर से बोलिए नारायण। जैसे ही नारायण चित्कार करता है, चार विष्णु दूत वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि नारायण चार अक्षर का यह नाम था। चार विष्णु दूत वहां पर पहुंच जाते हैं और यमदूत को बोलते हैं कि आप इस आत्मा को नहीं ले सकते। यमदूत बोलते हैं कि ये हमको पाठ सिखा रहा है क्या, जीवन भर पाप क्या है, ऐसा एक पाप कर्म जो इसने किया नहीं है, लिख लिख कर वहां पर हमारा पोथी भर गया है, और इसको तो ऐसा पकौड़ा करेंगे तेल में, पूछो ही मत। तो बोले कि नहीं नहीं आप नहीं ले सकते। और ये विष्णुदूत थोड़े पावरफुल रहते हैं, उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म रहता है, थोड़ा भारी रहते हैं थोड़ा यमदूत से। तो यमदूत बोल रहे कि इनके साथ झगड़ा करके अपना हाथ पैर तोड़ने का कुछ इरादा नहीं है। बोलते कि ठीक है आप बोल रहे तो नहीं लेता हूं, छोड़ देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यमदूत को डाइजेस्ट नहीं होता है कि अभी तक हमारा सेवा में एक बार भी फेल नहीं हुए, पहली बार कोई हमको फेल किया है, कि जाके राजा को बोलते हैं, यमराज को बोलते हैं कि महाराज पहली बार कोई हमको परास्त किया है। बोले कि कौन क्या है परास्त, पता नहीं कौन थे, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म पकड़े थे और बहुत सुंदर दिख रहे थे, जैसे ही बोलते उनके सामने थोड़ा अपना शक्ति कम लगा तो छोड़ के आ गए। बोले अच्छा क्या छोड़ के आ गया, युद्ध नहीं किया, नहीं तो हाथ पैर सब तुम्हारा हो जाता वहां पर। और वो और कोई नहीं थे, वो वैकुंठ से आए थे, भगवान विष्णु के पार्षद थे, विष्णु दूत थे। बोले कि वो तो ठीक है, बताइए महाराज ये अजामिल इतना पाप क्या है, भर भर के पाप क्या है, ऐसा एक पाप है जो उसने किया नहीं है, और उसको लेने के लिए जब गए तो इनसे परास्त कैसे हुए। तो यमराज बोलते कि अच्छा ऐसा क्या कर दिया मरते मरते कि ऐसा हो गया। नहीं, मरते मरते उसने अपने बेटा को बुलाया, क्योंकि बेटा अभी जो छोटा बेटा रहता है उससे ज्यादा आसक्ति रहता है ना, माँ बाप का प्रेम ज्यादा लेता है। तो इसने भी छोटा बेटा था, नारायण था, छोटा बेटा था, खेल रहा था, तो मर रहा था, तो बेटा को बुला के मर गया, मत बेटा जा रहा हूं। तो बेटा का नाम नारायण था, तो बोला नारायण बोल के मर गया। बोला अच्छा उसने नारायण बोला। बोला हाँ, तो बस हो गया, नारायण बोला, भगवान का नाम बोला, तो फिर कैसे उसको पकड़ सकते हो। बोला अरे जीवन भर पाप किया और एक बार नारायण लिया तो छूट। बोले हाँ छूट, यही तो भगवान का नाम का महिमा है।
एक बार भी व्यक्ति भगवान को भी बुलाया नहीं, किसको बुलाया था? बेटा को बुलाया था, बेटा को बुलाया था, लेकिन उससे भी जन्म जन्मांतर का इतना पाप सा उससे छुटकारा मिल जाता है। सोचो अगर आप सामने सीधा राधा वृंदावन विहारी को प्रार्थना करते हुए नए साल का शुरुआत करेंगे और उनका हरिनाम में भाग लेके प्रेम से हृदय से हरिनाम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कितना पापों से छुटकारा मिलेगा। थोड़ा सोच के देखिए, ये अजामिल कथा में ये हमको समझ में आता है कि अगर नया साल का शुरुआत करना है, पार्टी में जाके डिस्को में दारू पी के नाच के शुरुआत मत कीजिए। जो नशा में हो के दारू में हो के नया साल का शुरुआत करेंगे, सोचिए नया साल कैसा जाएगा। नया साल का शुरुआत करेंगे तो भगवान के, नाचना है तो नाचिए लेकिन भगवान के सामने नाचिए। एक बार हमारा मंदिर में, यहाँ पर बॉम्बे में हमारा प्रेरणा फेस्टिवल होता है, वहां पर महीने में एक बार होता है और जितने सारे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होता है, सब कॉलेज के स्टूडेंट आते हैं और धमाल करके कथा कीर्तन होता है, नाचते हैं। तो ग्रांट रोड में एक व्यक्ति घूमते घूमते आवाज सुना तो घुस गया अंदर, वो भी नाचने लगा, दमदार करके नाचने लगा और नाचा, प्रसाद खाया, प्रसाद भी फिस्ट रहता है, अच्छे से प्रसाद लिया और जाते जाते रिसेप्शन में बोलता है कि कितना फीज हुआ। बोले कि फ्रीज नहीं, फ्री है। बोले क्या फ्री है? बोला कि मैं हर रोज यहाँ पर डिस्को में जाता हूँ रात में, साउथ बॉम्बे का आदमी था, हर रोज डिस्को में जाता हूँ नाचने के लिए और वहां पर नाचता हूँ, सब लोग अंधेरा कर देते हैं रूम को और आपने तो पूरा उजाला करके नाच रहे थे यहाँ पर, और वहां पर भी नाचते हैं, दारू पी के नाचते हैं और खाते हैं और जाते जाते बड़ा बिल दे के जाता हूँ मैं हर रोज, और उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा आनंद मिला आपके मंदिर में नाच के, और वहां पर कोई बिल भी नहीं, कुछ पैसा भी नहीं और फ्री भी है। अरे बहुत ही अच्छा है, हर रोज आऊंगा इधर नाचने के लिए। तो अगर डिस्को में नाचना है, अगर आपको सही में नृत्य करना है, फिस्ट करना है, तो मंदिर में आके भगवान कृष्ण के सामने नाचिए, भगवान कृष्ण के सामने कीर्तन खाइए और भगवान कृष्ण का महाप्रसाद लीजिए। आपका जीवन शुरुआत सबसे मंगल, शुभ मंगल होकर नया साल शुरुआत होगा। तो इस प्रकार नया साल का शुरुआत हमको करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, गोवर्धन इको विलेज में जब शुरुआत हुआ, लोगों को पता नहीं था यहां क्या है, लेकिन आज के तारीख में हर संडेज को 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं। सोचिए, एक संडे को पीछे तो 11,000 लोग आए और आज 31 दिसंबर है, लोग ऐसे आ रहे हैं, सोचिए लोगों का गिनती ही नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे लोग यहाँ पर, जो आप लोग आप आ रहे हो, तो इस जगह का पूरा लाभ भी उठाना चाहिए। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि आएंगे दोनों फोटो खींच लिए और बॉलीवुड का गाना में एक रील बना के चले गए। उस बार मैं वृंदावन फॉरेस्ट में जा रहा था, बॉलीवुड के गाना में रील बना रहे, मैं बोला कि अरे भाई साहब, आपको सारा संसार कम पड़ गया क्या बॉलीवुड के गाना में रील बनाने के लिए? भगवान के घर आए, ये वृंदावन क्या है? जैसे आपका घर है ना, वैसे ही विरार पालघर छोड़ के यहाँ पर आए हैं, तो भगवान कृष्ण का भी घर है, जहां पर कृष्ण भगवान रहते हैं, वो घर कौन सा है? उसको वृंदावन बोलते हैं, जहां पर भगवान का ये घर है। तो बोले कह रहे प्रभु जी कुछ भी बोल रहे, तो ये थोड़ी भगवान का घर है, ये तो घूमने जैसा है ना, भगवान का घर तो भगवान के पास रहेगा। अरे ऐसा नहीं होता है, भगवान आध्यात्मिक जगत में लीला करते हैं वृंदावन में, और हम लोग भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान आपको नहीं भूलते हैं। जैसे बेटा बड़ा हो जाता है तो मम्मी पापा को कभी कभी भूल जाता है, बोलता है कि हमको थोड़ा स्पेस चाहिए, बोलते हैं आज के जमाने में बोलते हैं स्पेस चाहिए, तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा ठीक है स्पेस ले लो, तो अलग हो जाते हैं। लेकिन मम्मी पापा कभी भूलते हैं? मम्मी याद करेगी बेटा खाया कि नहीं, बहू ने खिलाया कि नहीं, ये उसको पसंद आता था, मम्मी मम्मी है ना, उसको भूल के हम ओल्ड एज होम में रख देते हैं, वृद्ध आश्रम में, लेकिन वो आपको कभी नहीं भूलते हैं। एक बार एक वृद्ध आश्रम में जाके मैं प्रोग्राम कर रहा था और प्रोग्राम करके उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो सब आके बोले प्रभु जी बहुत अच्छा लगा। मैं बोला क्या अच्छा लग गया आपको? बोले कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, गिफ्ट देते हैं, जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता है हमसे। आपने ज्यादा कुछ बड़ा गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन आपने 3 घंटा यहाँ पर बैठ के हमारे साथ बात किया, हमारा बच्चा भी खुद इतना बात नहीं करता है, इसलिए दिल भर गया, आनंद आया। देखिए
पेरेंट्स को ज्यादा कुछ बच्चों से आशा नहीं रहता है, उन्होंने सब कुछ दिया आप उनको क्या दे देंगे, उनसे आशा रहता है आपका प्रेम बस। तो ठीक उसी तरह भगवान भी आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। भगवान क्या मांगते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छते, भक्ति से एक फल दे दो, भगवान के पास आए हो तो एक फूल चढ़ा दो, कुछ नहीं मिले बोलेगा अरे प्रभु जी बहुत महंगा है फल फूल कहाँ मिलेगा, अरे कुछ नहीं तो पानी चढ़ा दो भगवान को तोयम, पानी तो मिलता है ना फ्री में, भगवान उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन जो भी चढ़ाओगे कैसे चढ़ाओगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया उपहर्तम, भक्ति से चढ़ाना है। ऐसा नहीं को मैंने इतना दिया है डोनेशन, भगवान को पैसा का कुछ कमी नहीं है, वो लक्ष्मीपति हैं। दुर्योधन ने 56 भोग चढ़ाया था भगवान को, भगवान को बोला 56 भोग आपके लिए बनाया, भगवान ने बोले भूख नहीं है, हालांकि भूख लग रहा था दोपहर का टाइम था, भूख नहीं है बोले भगवान, ठुकरा दिया दुर्योधन का 56 भोग। खाने के लिए किधर गए, विदुरानी के घर गए और दरवाजा नॉक कर रहे हैं, अरे विदुरानी दरवाजा खोलो भूख लग रहा है। विदुरानी टेंशन में आ गए क्योंकि लंच हो गया था, टाइम हो गया था, 4-5 बज गया था। तो विदुरानी बोल रहे कि अभी कुछ नहीं है घर में, क्या खिलाऊं, कृष्ण आ गए। तो कृष्ण बोले नहीं जो भी है वो खिला दो, जो भी है दे दो। तो विदुरानी इतना टेंशन में आ जाती है, घर में जाती है वो केला, केला था बस, खा तो चुकी है केला था, तो इतना नर्वस हो जाती है केला का छिलका खिलाती है और केला फेंक दिए, केला का छिलका खिला रहे केला फेंक रहे और भगवान खा रहे प्रेम से। केला का छिलका कोई खाया है क्या, खाया कैसा लगता है, बहुत कड़वा लगता है, केला का छिलका खाएंगे तो कड़वा रहता है। भगवान नहीं बोले, कह रहे मूर्ख क्या केला का छिलका खिला रहे हो, केला खिलाओ, नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे, भगवान देख रहे हैं कि विदुरानी का प्रेम का प्रभाव में बाधा नहीं होना चाहते हैं, बोले कितना प्रेम में खिला रही है, तो केला का छिलका हुई अमृत पान करके अमृत जैसा पान खा रहे हैं। और उसी समय विदुर आता है, बोले कह रहे मूर्ख क्या खिला रही हो केला का छिलका, केला खिलाओ, तब जाके विदुरानी केला खिलाती। तब तक भगवान नहीं बोले थे, तो इससे पता चलता कि भगवान भूखे हैं तो आपके पैसा के लिए भूखे नहीं है, भगवान भूखे हैं तो आपके प्रेम के लिए भूखे हैं। तो इसलिए भगवान को हमने तो छोड़ दिया है, इस भवसागर में आ गए हैं, तो भगवान ने हमको नहीं छोड़ा है, हमको फिर से भगवान अपने घर लेने के लिए, भगवान उस आध्यात्मिक वृंदावन को छोड़ के इस भवसागर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में आते हैं, ताकि भगवान अपने बच्चे को फिर से ले पाए। और भगवान जब आएंगे तो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, अगर मोदी जी इधर आएंगे पालघर में, सब पालघर गवर्नमेंट टेंशन में आ जाएगा, उनको कौन से होटल में रखना है, किधर रखना है, क्या खाना उनको पसंद है, बराबर ना। तो भगवान जब पृथ्वी में आते हैं तो भगवान का जो घर है वो ऊपर से नीचे आता है, और जब उसी वृंदावन जब नीचे आता है तो उसको बोलते हैं भौम वृंदावन, जो कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास है, जहां पर आके भगवान इतना सुंदर सुंदर लीलाएं किए, ठीक है ना। और भगवान चले गए लीला करके, भगवान ने छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया, लीला कर दिया वृंदावन में, लीला कर दिया, लेकिन आप जब लीला सुनते हैं बोलते हैं अरे इतना सुंदर लीला, जैसे छोटा छोटा ट्रेलर जब देखते हैं तो पूरा मूवी देखने का इच्छा होता है ना, 2 मिनट का ट्रेलर देखते ही 3 घंटा का मूवी देखने के लिए चले जाते हैं थिएटर में। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने इतना मधुर मधुर लीला किया है गोपियों के साथ, वृंदावन लीला जब सुनते हैं तो बोलते हैं कि लीला किधर चल रहा है, अरे लीला तो ऊपर चल रहा है, गोलोक वृंदावन में चल रहा है, तो जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो फिर हमको भक्ति करना पड़ता है फिर ऊपर जाने के लिए। और उसी वृंदावन जो है, भगवान के जो शुद्ध भक्त रहते हैं हमेशा भगवान को अपने हृदय में लेके घूमते हैं। जैसे आपका पैसा रहता है बैंक बैलेंस में, जहां पर आप चाहे वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो भगवान का प्रेमी भक्त जो प्रेमांजन चुरित भक्ति बिलोचने न, भगवान का जो प्रेमी भक्त हृदय में भगवान को लेके जाते हैं, भगवान का धाम वृंदावन को लेके जाते हैं, जहां चाहे वहां उनको विस्तार कर सकते हैं। तो उसी प्रकार है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के एक परम शिष्य है, उनका नाम है राधना स्वामी महाराज, जो कि भगवान को अपने हृदय में लेके हमेशा भ्रमण करते हैं, और वो अपने भक्ति का शक्ति में इस बंजर जंगल में इस सुंदर वृंदावन धाम को प्रकट किया है। जय श्री राधाना स्वामी महाराज की जय। तो उनका भक्ति का कृपा से हमको भगवान का जो घर है वृंदावन धाम यहां पर दर्शन हो पा रहा है। तो आप लोग इसी 31 दिसंबर के पावन तिथि में आए हो, इधर उधर होटल में पार्टी वार्टी ना जाके 31 दिसंबर में भगवान के घर आए हो, वृंदावन धाम आए हो, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। भगवान का भजन कीर्तन में भाग लीजिए, भगवान का कथा श्रवण कीजिए, भगवान का प्रसादम प्राप्त कीजिए, और जितना हो सके उतना जब जाएंगे आप वृंदावन धाम में, भगवान का कृष्ण का इतने सारे में बोल रहा था ना ट्रेलर, भगवान का जितने सारे उन्होंने लीलाएं किया है, हर लीलाओं का दर्शन आप अंदर जाके कर पाएंगे। हर भगवान किस प्रकार ब्रह्मा जी को विमोहित कर रहे हैं, भगवान किस प्रकार गोवर्धन पर्वत धारण कर रहे हैं, भगवान किस प्रकार यमुना में लीला कर रहे हैं, किस प्रकार बरसाना में राधा रानी अपना कृपा को बरस रही कर रही है, नंदगांव में कैसे नंदगांव में नंद बाबा का जो धाम है, ये सबको जी भर के आनंद में भ्रमण करके दर्शन कीजिए और उसको अपने हृदय में बसा लीजिए, ताकि उस जगह हमको भी जाने का इच्छा हो जाए। आपको लग रहा है यहाँ तो आएंगे घूम के चले जाएंगे, अपना तो घर है वसई विरार पालघर बॉम्बे चले जाएंगे, वो आपका घर नहीं है। पर क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, कुछ भी बोले वो हमारा घर है, ये थोड़ी हमारा घर है। आपका घर वो नहीं है किराए के मकान में, या घर अगर खरीद भी लिया है तो 60-70 साल जो जिएंगे उतना ही आपका घर है, उसके बाद थोड़ी आपका घर है। जैसे ही आप जाएंगे राम राम सत्य है, घर का नेम लिस्ट में नेम चेंज हो जाता है, बच्चा का नाम आ जाता है, फिर बच्चा गया था पोते का नाम आ जाता है, तो वो आपका घर नहीं है। वो लेके जाने वाले हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले। इसलिए जब हमारा आया था यहाँ पर और औरंगजेब अलेक्जेंडर जब आया था भारत के ऊपर, जब अलेक्जेंडर भारत में ही वो मरा, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में मरा, तो मिनिस्टर को बोलता है कि जब मैं मरूंगा दोनों हाथ को ऐसा खुला करके मेरा शमशान में मुझे लेके जाना। तो मिनिस्टर भी डर जाता कि ऐसा क्यों महाराज, क्या हो गया। बोले कि मैं सारा दुनिया को बताना चाहता हूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सारा विश्व का सम्राट बना था, सभी राजा को जो परास्त किया है, जब मर के जा रहा हूं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं, खाली हाथ लेके जा रहा हूं, सब छोड़ के जा रहा हूं, सारा विश्व का सम्राट खालिया जा रहा है। जैसे खालिया जन्म लिया था वैसे ही खालिया जा रहा हूं, समाज को यह मेरा सबसे बड़ा संदेश बताना चाहता हूं। और दूसरा इंस्ट्रक्शन अलेक्जेंडर बोला था, मैं जब मरने के लिए जाऊंगा ना, मेरा कब्र में जब मुझे डालोगे तो रास्ते में जितना दहेज हीरा मोती सोना मैंने तिजोरी में भर भर के राजाओं को परास्त करके लाया था, सब रोड में बिरछा देना, फेंक देना, और उसी के ऊपर मुझे चला के लेके जाना। तो मिनिस्टर बोलते कि ऐसा क्यों महाराज, तो बोले कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि किस धन के पीछे मैं पागल था और इतना जीवन में व्यर्थ गंवा दिया उस धन को कमाने के लिए, जब मर के जा रहा हूं तो एक धन भी मेरा जीवन को बचाने के लिए काम में नहीं आ रहा है। हजार हजार इधर वैद्य, दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा एक्सपर्ट डॉक्टर यहां पर खड़े हैं, लेकिन मेरा जीवन को एक सेकंड भी आगे बचा नहीं पा रहे हैं। कमला जला तला जीवन टला मला, कमल के फूल के पत्ते के ऊपर पानी का बूंदा आपने देखा रहेगा कैसा रहता है, हिलते रहता है ना, हवा का झोंका आया यूं खिसक जाता है, उसी तरह जीवन का जो प्राण वायु है इस हृदय में ऐसा हिलते रहता है। कब हृदय छोड़कर बाहर आएगा कुछ गारंटी नहीं है, तो मैं संसार को बताना चाहता हूं। तो ये है, इसलिए हमारा जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी गाड़ी है, जो भी घर है, मृत्यु के बाद कुछ भी उसको लेके जा नहीं पाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। तो हमारा घर कौन सा है फिर, ये हमारा घर है, जहां पर आप लोग आए हैं वो वृंदावन जो है, ये हमारा ओरिजिनल घर है। जैसे बच्चा मम्मी पापा को छोड़ के चला जाता है, उसी तरह हमने भगवान को छोड़ दिया है, भगवान का घर छोड़ दिया है। तो भगवान ने इस भौतिक संसार को बनाया है दुखालयम अशाश्वतम, जहां हर पल पल में फटका मिल रहा है माया देवी का, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का फटका मिल रहा है, आदि आत्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। अभी कोरोना 2-3 साल में कैसा ग्रस्त करके रखा था, फुर्सत थोड़ा आराम मिला, अभी न्यूज मिल रहा है कि फिर से आने वाला है, सुन के ही लोग डर रहे हैं। ये संसार में जो भी जीवात्मा आया है बोल रहे कि उसको फटका मिलने ही वाला है। कब कुछ ठीक चल रहा है तो घर में सांस बहू का प्रॉब्लम है, भाई भाई का प्रॉब्लम है, सब ठीक चल रहा है तो शरीर ग्रस्त है, मन तकलीफ दे रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस संसार में आपको आने ही वाला है। क्योंकि जो संसार ने बनाया है, भगवान गीता में बोल रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, यहां पर अमृत नहीं मिलने वाला, यहां पर दुख ही मिलने वाला है। जैसे भोजनालय में जाते तो भोजन मिलता है ना, पुस्तकालय जाता तो पुस्तक मिलता है, तो इस संसार में आए तो क्या मिलेगा? किसका आवाज नहीं आ रहा? क्या मिलेगा? दुख मिलने वाला है। क्योंकि संसार जो बनाया है, व्यक्ति बोला है कि संसार में जो भी जन्म लिया है उसको दुख मिलने वाला है। जैसे जेल में कोई जाता है तो उसको फटका मिलता है, प्रॉब्लम मिलता है, जेल में जाके कंप्लेन नहीं करता है, अरे ये क्या खाना दे रहा है, रूखा रोटी दे रहा है, सब्जी वही दे रहा है, एसी नहीं लगा है, क्या है यहां पर? बोले कि भाई तूने ऐसा काम किया है, मामा के घर आया है तो तुझे ये ही देने के लिए तो इधर भेजा है, इधर अगर एयर कंडीशन रूम में रखेंगे तो बोलोगे अरे तीन टाइम अच्छा मिल रहा है, एसी चल रहा है, इधर ही रह जाते हैं, आराम ही आराम है। तो ऐसा परिस्थिति रखा है ताकि तुझे मन करेगा बाहर जाने का। बोले वहां जेल में पत्थर तोड़ने के लिए लगाते हैं, जो काम करने के लिए आपको इच्छा नहीं होगा वैसे काम करते हैं ताकि आप सुधर जाएं। उसी तरह ये भौतिक संसार ऐसा डिजाइन किया है भगवान कि जितना भी आराम घर में एसी लगा दो फिर भी पसीना छूटेगा, क्योंकि अंदर टेंशन है, दिन में एसी चालू है फिर भी पसीना छूट रहा है क्योंकि अंदर मन में बहुत परेशानी है। तो संसार में ऐसा डिजाइन भगवान ने किया है कि यहां पर दुख दोषणम जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा ऐसा कष्ट मिलेगा व्यक्ति को, हमेशा तकलीफ मिलते रहेगा, ताकि क्या सोचे वो, जेल से बाहर जाने का रास्ता क्या है जेलर जी बता दीजिए। जेलर बोलेंगे सुधर जा, चरित्र में सुधार ले आ, बाहर चला जाएगा। तो उसी तरह दुर्गा देवी खड़ी है त्रिशूल लेके। नाम क्यों है दुर्गा? क्योंकि ये जो संसार रूपी जेल है दुर्ग, इसको बोलते हैं दुर्ग, फोर्ट बोलते हैं ना दुर्ग, इसका जो इंचार्ज कौन है? दुर्गा। त्रिशूल लेके खड़ी है, आदि आत्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तीन त्रिशूल का ये जो है सबको पीछे से लगा रही कि जाके अपने भगवान का शरणागत ले ले, कृष्ण का शरणागत ले ले और इस संसार से मुक्त होके भगवान के धाम चला जाएगा। तो आइए इस नया साल में रिजोल्यूशन ले कि किस प्रकार ये हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक ही मकसद पूर्ण करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा कीजिए, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद किधर जाऊंगा, ये छोटा सा जीवन में मुझे क्या करना चाहिए ताकि इस जन्म मृत्यु चक्र से मैं मुक्त होके भगवान के धाम जाके भगवान के साथ मैं सानिध्य में प्राप्त करके उनके साथ लीला कर पाऊं, ये प्रश्न को सोचने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। नहीं तो व्यास देव बोलते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी समानम, खाना पीना मैथुन करना तो साधारण जानवर भी करता है बिना नौकरी करते हुए, हमको तो 9 का 6 का नौकरी करना पड़ता है, जानवर तो बिना मेहनत करके उसको मिल जाता है। तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या है, इसी अंतर को मनन करना सोचने के लिए ये नया साल में आप सोच सकते हैं कि एक साल चला गया 2023 में, क्या क्या मैं गलती किया, कैसे कैसे समय को बर्बाद किया ताकि आगे जो आ रहा है 2024 में उस गलतियों को मैं ना दोहरा हूं। जीवन में उस व्रत को लीजिए ताकि कैसे हर क्षण भगवान कृष्ण का मनन कर पाऊं और जीवन में ऐसा चॉइस ऐसा निर्णय लूं ताकि मेरा जो गंतव्य है भगवान के पास थोड़ा 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 आगे आगे चला जाए। तो ऐसा अगर कहेंगे तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा और इसी के लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। तो समय हो चुका है 11:30, और आज है परम पूज्य हमारे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि है, इनको बोला जाता है सिंह गुरु। आइए, इनका आविर्भाव तिथि है, बोलते हैं कि जब भी गोस्वामी का जन्म तिथि रहता है, आविर्भाव तिथि है रहता है, और बहुत दयालु रहते हैं, क्योंकि उसी दिन जो भी सामने आता है उनको भर भर के कृपा देते हैं। तो आइए, इनके आविर्भाव तिथि में उनको नमन करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं कि उनका कृपा प्राप्त करें और अपने भक्ति के जीवन में आगे बढ़ पाएं। और अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बहुत सारा हम भजन गाने वाले हैं, सब लोग इस भजन में शामिल होइए। और 12 बजे ठीक उनका पुष्पांजलि होगा, पुष्पांजलि में भाग लेके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। जय श्री प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमें नए साल की शुभकामनाएं, आज का जो विषय था उसके बारे में बताया है, कैसे हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल जो भी हमारे जीवन में बीत रहा है वो एक भौतिक व्यक्ति के लिए वो मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है ना। लेकिन प्रभु जी ने बताया हमें कि कैसे अगर हमारा जीवन श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर आधारित है तो हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक साल जो हमारे जीवन में बीत रहा है वो हमें कहाँ लेके जा रहा है? शाश्वत जीवन की तरफ लेके जा रहा है ना। तो शाश्वत जीवन जहाँ पे जन्म नहीं है, जहाँ पे एक बार जाएंगे हम तो वहाँ पे मृत्यु नहीं होगी, वहाँ पे जरा यानी बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ पे हमको कभी व्याधि नहीं जड़ेगी। ऐसा जीवन, ऐसे संबंध हम बनाएंगे जो शाश्वत रहेंगे, है ना, प्रेम भरे संबंध कृष्ण भगवान के धाम में, कृष्ण भगवान के साथ, उनके भक्तों के साथ। ऐसे जीवन को हमको प्राप्त करने के लिए आज प्रभु जी ने हमको प्रेरणा दी है ये नए साल के अवसर पर, तो इनका हम धन्यवाद देंगे। हमारे पारंपरिक पद्धति से सब लोग हाथ ऊपर करेंगे और 3 बार एक साथ हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 31 दिसंबर पे जो लोग बाहर में मौज मजा कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कृष्ण भगवान के मंदिर में आके उनके दर्शन लेने का, जो यहाँ पे प्रति वृंदावन बनाया है उसको देखने का, कीर्तन कथा में सहभाग लेने का आपने ये चयन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सारे भक्त आप यहाँ पे पहली बार आए होंगे, तो हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी श्रीमान गौरांग महाप्रभु यहाँ पे जो विराजमान है, श्री श्री राधा मदन मोहन जी, श्री गिरिराज जी, इनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपके उज्जवल कृष्ण भावनामय जीवन की एक शुरुआत बने। और ऐसी हर रविवार को यहाँ पे ये सुंदर प्रोग्राम होता है।